का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अपरिचिता। आज मेरी आयु केवल 27 साल की है। यह जीवन ना दीर्घता के हिसाब से बड़ा है ना गुण के हिसाब से, तो भी इसका एक विशेष मूल्य है। यह उस फूल के समान है जिसके वक्ष पर भ्रमर आ बैठा हो और उसी पदक्षेप के इतिहास ने उसके जीवन के फल में गुठली का सा रूप धारण कर लिया हो। वह इतिहास आकार में छोटा है, उसे छोटा करके ही लिखूंगा। जो छोटे को साधारण समझने की भूल नहीं करेंगे वे इसका रस समझेंगे। कॉलेज में पास करने के लिए जितनी परीक्षाएं थी मैंने सब खत्म कर ली हैं। बचपन में मेरे सुंदर चेहरे को लेकर पंडित जी को सेमल के फूल तथा माकाल फल, यानी बाहर में देखने में सुंदर तथा भीतर से दुर्गंध युक्त और अखाद्य गुदे वाला एक फल, उसके साथ मेरी तुलना करके हंसी उड़ाने का मौका मिला था। तब मुझे इससे बड़ी लज्जा लगती थी, किंतु बड़े होने पर सोचता रहा हूं कि यदि पुनर्जन्म हो तो मेरे मुख पर स्वरूप और पंडित जी के मुख पर विदुप्र इसी प्रकार प्रकट हो। एक दिन था जब मेरे पिता गरीब थे। वकालत करके उन्होंने बहुत सा रुपया कमाया, भोग करने का उन्हें पल भर भी समय नहीं मिला। मृत्यु के समय उन्होंने जो लंबी सांस ली थी वही उनका पहला अवकाश था। उस समय मेरी अवस्था कम थी, मां के ही हाथों मेरा लालन पालन हुआ। मां गरीब घर की बेटी थी अतः हम धनी थे। यह बात ना तो वे भूलती थी और ना मुझे भूलने देती। बचपन में मैं सदा गोद में ही रहा, शायद इसलिए मैं अंत तक पूरे तौर पर व्यसक ही नहीं हुआ। आज ही मुझे देखने पर लगेगा जैसे मैं अन्नपूर्णा की गोद में गजानन का छोटा भाई हूं। मेरे असली अभिभावक थे मेरे मामा। वे मुझसे मुश्किल से 6 वर्ष बड़े होंगे, किंतु फल्गु की रेती की तरह उन्होंने हमारे सारे परिवार को अपने हृदय में सोख लिया था। उन्हें खोदे बिना इस परिवार का एक भी बूंद रस पाने का कोई उपाय नहीं। इसी कारण मुझे किसी भी वस्तु के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। हर कन्या के पिता स्वीकार करेंगे कि मैं सत्पात्र हूं, हुक्का तक नहीं पीता, भला आदमी होने में कोई झंझट नहीं है, अतः मैं नितांत भला मानस हूं। माता का आदेश मानकर चलने की क्षमता मुझ में है, वस्तुतः ना मानने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं अपने को अंतःपुर के शासनानुसार चलने के योग्य ही बना सकता हूं। यदि कोई कन्या स्वयंवरा हो तो इन सुलक्षणों को याद रखे। बड़े बड़े घरों से मेरे विवाह के प्रस्ताव आए थे, किंतु मेरे मामा का, जो धरती पर मेरे भाग्य देवता के प्रधान एजेंट थे, विवाह के संबंध में एक विशेष मत था। अमीर की कन्या उन्हें पसंद न थी। हमारे घर जो लड़की आए वह सिर झुकाए हुए आए, वह यही चाहते थे। फिर भी रुपए के प्रति उनकी नस-नस में आसक्ति समाई हुई थी। वे ऐसा समधी चाहते थे जिसके पास धन तो ना हो पर जो धन देने में त्रुटि ना करे, जिसका शोषण तो कर लिया जाए पर जिसे घर आने पर गुड़गुड़ी के बदले बंधे हुक्के में तंबाकू देने पर जिसकी शिकायत न सुननी पड़े। मेरा मित्र हरीश कानपुर में काम करता था। छुट्टियों में उसने कलकत्ता आकर मेरा मन चंचल कर दिया। बोला, सुनो जी, अगर लड़की की बात हो तो एक अच्छी खासी लड़की है। कुछ दिन पहले ही एमए पास किया था। सामने जितनी दूर तक दृष्टि जाती, छुट्टी धूं धूं कर रही थी। परीक्षा नहीं है, उम्मीदवारी नहीं, नौकरी नहीं, अपनी जायदाद देखने की चिंता भी नहीं, शिक्षा भी नहीं, इच्छा भी नहीं। होने में भीतर मां थी और बाहर मामा। इस अवकाश की मरुभूमि में मेरा हृदय उस समय विश्वव्यापी नारी रूपा की मरीचिका देख रहा था। आकाश में उसकी दृष्टि थी, वायु में उसका निश्वास, तरु मर्मर में उसकी रहस्यमयी बातें। ऐसे में ही हरीश आकर बोला, अगर लड़की की बात हो तो। मेरा तन मन वसंत वायु से दोलायित बकुल वन की नवपल्लव राशि की भांति धूप छां का पट बुनने लगा। हरीश आदमी था रसिक, रस उड़ेल कर वर्णन करने की उसमें शक्ति थी, और मेरा मन था त्रिषात। मैंने हरीश से कहा, एक बार मामा से बात चला कर देखो। बैठक जमाने में हरीश अद्वितीय था, इससे सर्वत्र उसकी खातिर होती थी। मामा भी उसे पाकर छोड़ना नहीं चाहते थे। बात उनकी बैठक में चली, लड़की की अपेक्षा लड़की के पिता की जानकारी ही उनके लिए महत्वपूर्ण थी। पिता की अवस्था वे जैसी चाहते थे वैसी ही थी। किसी जमाने में उनके वंश में लक्ष्मी का मंगल घट भरा रहता था, इस समय उसे शून्य ही समझो। फिर भी तले में थोड़ा बहुत बाकी था। अपने प्रांत में वंश मर्यादा की रक्षा करके चलना सहज ना समझकर वे पश्चिम में जाकर वास कर रहे थे। वहां गरीब गृहस्थ की ही भांति रहते थे। एक लड़की को छोड़कर उनकी ओर कोई नहीं था, अतएव उसी के पीछे लक्ष्मी के घट को एकदम औंधा कर देने में हिचकिचाहट नहीं होगी। यह सब तो सुंदर था, किंतु लड़की की आयु 15 की है, यह सुनकर मामा का मन भारी हो गया। वंश में तो कोई दोष नहीं है, नहीं, कोई दोष नहीं। पिता अपनी कन्या के योग्य वर कहीं भी ना खोज पाए। एक तो वर की हाट में महंगाई थी, तिस पर धनुष भंग की शर्त। अतः बाप सब्र किए बैठे हैं, किंतु कन्या की आयु सब्र नहीं करती। जो हो, हरीश की सरस रचना में गुण था। मामा का मन नरम पड़ गया। विवाह की भूमिका भाग निर्विघ्न पूरा हो गया। कलकत्ता के बाहर बाकी जितनी दुनिया है, सबको मामा अंडमान द्वीप के अंतर्गत ही समझते थे। जीवन में एक बार विशेष काम से वे कोन्नगर तक गए थे। मामा यदि मनु होते तो वे अपनी संहिता में हावड़ा के पुल को पार करने का एकदम निषेध कर देते। मन में इच्छा थी खुद जाकर लड़की देखाऊं, पर प्रस्ताव करने का साहस ना कर सका। कन्या को आशीर्वाद देने, बंगालियों में विवाह पक्का करने के लिए एक रस्म होती है, जिसमें वर पक्ष के लोग कन्या को और कन्या पक्ष के लोग वर को आशीर्वाद देकर कोई आभूषण दे जाते हैं। जिनको भेजा गया वह हमारे विनू दादा थे, मेरे फुफेरे भाई। उनके मत, रुचि एवं दक्षता पर मैं 16 आने निर्भर कर सकता था। लौटकर विनु दादा ने कहा, बुरी नहीं है जी, असली सोना है। विनु दादा की भाषा अत्यंत संयत थी। जहां हम कहते थे अपूर्व, वहां वह कहते काम चलाओ। अतएव मैं समझा मेरे भाग्य में पंचर का प्रजापति से कोई विरोध नहीं है। कहना व्यर्थ है, विवाह के उपलक्ष में कन्या पक्ष को ही कलकत्ता आना पड़ा। कन्या के पिता शंभुनाथ बाबू हरीश पर कितना विश्वास करते थे, इसका प्रमाण यह था कि वे विवाह के 3 दिन पहले उन्होंने मुझे पहली बार देखा और आशीर्वाद की रस्म पूरी कर गए। उनकी अवस्था 40 के ही आसपास होगी। बाल काले थे, मूंछों का पकना अभी प्रारंभ ही हुआ था। रूपवान थे, भीड़ में देखने पर सबसे पहली नजर उन पर ही पड़ने लायक उनका चेहरा था। आशा करता हूं कि मुझे देखकर वे खुश हुए। समझना कठिन था क्योंकि वह अल्पभाषी थे। जो एकाध बात कहते भी थे उसे मानो पूरा जोर देकर नहीं कहते थे। इस बीच मामा का मुंह अबाद गति से चल रहा था। धन में, मान में हमारा स्थान शहर में किसी से कम नहीं था। वे नाना प्रकार से इस बात का प्रचार कर रहे थे। शंभुनाथ बाबू ने इस बात में बिल्कुल योग नहीं दिया। किसी भी प्रसंग में कोई हां या हूं तक नहीं सुनाई पड़ी। मैं होता तो निरुत्साहित हो जाता, किंतु मामा को हतोत्साहित करना कठिन था। उन्होंने शंभुनाथ बाबू का शांत स्वभाव देखकर सोचा कि आदमी बिल्कुल निर्जीव है, तनिक भी तेज नहीं। समधियों में और जो हो, तेज भाव होना पाप है। अतएव मन ही मन मामा खुश हुए। शंभुनाथ बाबू जब उठे तो मामा ने संक्षेप में ऊपर से ही उनको विदा कर दिया। गाड़ी में बिठाने नहीं गए। दहेज के संबंध में दोनों पक्षों में बात पक्की हो गई थी। मामा अपने को असाधारण चतुर समझकर गर्व करते थे। बातचीत में वे कहीं कोई भी छिद्र न छोड़ते। रुपए की संख्या तो निश्चित ही थी, ऊपर से गहना कितने भर एवं सोना किस स्तर का होगा ये भी एकदम तय हो गया था। मैं स्वयं इन बातों में नहीं था, न जानना ही था कि क्या लेन देन निश्चित हुआ है। मैं जानता था कि यह स्थूल भाग ही विवाह का एक प्रधान अंग है, एवं उस अंश का भार जिनके ऊपर है वह कोड़ी भी नहीं ठगाएंगे। वस्तुतः अत्यंत चतुर व्यक्ति के रूप में मामा हमारे सारे परिवार में गर्व की प्रधान वस्तु थे। जहां कहीं भी हमारा कोई संबंध हो, पर्वत ही बुद्धि की लड़ाई में जीतेंगे, यह बिल्कुल पक्की बात थी। इसलिए हमारे यहां कभी न रहने पर भी एवं दूसरे पक्ष में कठिन अभाव होते हुए भी हम जीतेंगे। हमारे परिवार की जिद थी, इसमें चाहे कोई बचे या मरे। हल्दी चढ़ाने की रस्म बड़ी धूमधाम से हुई। ढोने वाले इतने थे कि उनकी संख्या का हिसाब रखने के लिए क्लर्क रखना पड़ा। ढोने वाले इतने थे कि उनकी संख्या का हिसाब रखने के लिए क्लर्क रखना पड़ता। उनको विदा करने में अवर पक्ष का जो नाको दम होगा उसका स्मरण करके मामा के साथ स्वर मिलाकर मां खूब हंसी। बैंड, शहनाई, फैंसी कंसर्ट आदि जहां जितने प्रकार की जोरदार आवाजें थी, सबको एक साथ मिलाकर बर्बर कोलाहल रूपी मस्त हाथी द्वारा संगीत सरस्वती के पार्वन को दलित विदलित करता हुआ मैं विवाह के घर में जा पहुंचा। अंगूठी, हार, जरी, जवाहरात से मेरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे गहने की दुकान नीलाम पर चढ़ी हो। उनके भावी जमाता का मूल्य कितना था, ये जैसे कुछ मात्रा में सर्वांग में स्पष्ट रूप से लिखकर भावी ससुर के साथ मुकाबला करने चला था। मामा विवाह के घर पहुंचकर प्रसन्न नहीं हुए। एक तो आंगन में बारातियों के बैठने के लायक जगह नहीं थी, तिस पर संपूर्ण आयोजन एकदम साधारण ढंग का था। ऊपर से शंभुनाथ बाबू का व्यवहार भी निहायत ठंडा था। उनकी विनय अजस्त्र नहीं थी, मुंह में शब्द ही न थे। बैठे गले, गंजी, खोपड़ी, कृष्ण वर्ण एवं स्थूल शरीर वाले उनके एक वकील मित्र यदि कमर में चादर बांधे, बराबर हाथ जोड़े, सिर हिलाते हुए नम्रतापूर्वक सिमत हास्य और गदगद वचनों से कंसर्ट पार्टी के करताल बजाने वाले से लेकर परकर्ता तक प्रत्येक को बार बार प्रचुर मात्रा में अभिषिक्त ना कर देते तो शुरू में ही मामला इस पार या उस पार हो जाता। मेरे सभा में बैठने के कुछ देर बाद ही मामा शंभुनाथ बाबू को बगल के कमरे में बुला ले गए। पता नहीं क्या बातें हुई। कुछ देर बाद ही शंभुनाथ बाबू ने आकर मुझसे कहा, लाला जी जरा इधर तो आइए। मामला यह था, सभी का ना हो किंतु किसी किसी मनुष्य का जीवन में कोई एक लक्ष्य रहता है। मामा का एकमात्र लक्ष्य था वे किसी भी प्रकार किसी से ठगे नहीं जाएंगे। उन्हें डर था कि उनके संबंधी उन्हें गहनों में धोखा दे सकते हैं। विवाह कार्य समाप्त हो जाने पर उस धोखे का कोई प्रतिकार ना हो सकेगा। घर, किराया, सौगात, लोगों की विदाई आदि के विषय में जिस प्रकार की खींचातानी का परिचय मिला उसे मामा ने निश्चय किया था। लेने देने के संबंध में इस आदमी की केवल जबानी बात पर निर्भर रहने से काम न चलेगा। इसी कारण घर के सुनार तक को साथ लाए थे। बगल के कमरे में जाकर देखा, मामा एक कुर्सी पर बैठे थे, एक सुनार अपनी तराजू, बाट और कसौटी आदि लिए जमीन पर। शंभुनाथ बाबू ने मुझसे कहा, तुम्हारे मामा कहते हैं कि विवाह कार्य शुरू होने के पहले ही वे कन्या के सारे जेवर जंचवा कर देखेंगे, इसमें तुम्हारी क्या राय है? मैं सिर नीचा किए चुप रहा। मामा बोले, वह क्या कहेगा, मैं जो कहूंगा वही होगा। शंभुनाथ बाबू ने मेरी ओर देखकर कहा, तो फिर यही तय रहा, ये जो कहेंगे वही होगा, इस संबंध में तुम्हें कुछ नहीं कहना है। मैंने जरा गर्दन हिलाकर इशारे से बताया कि इन सब बातों में मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है। अच्छा तो बैठो, लड़की के शरीर से सारा गहना उतरवा कर लाता हूं। ये कहते हुए वे उठे। मामा बोले, अनुपम यहां क्या करेगा, वह सभा में जाकर बैठे। शंभुनाथ बोले, नहीं सभा में नहीं, यहीं बैठना होगा। कुछ देर बाद उन्होंने एक अंगोछे में बंधे गहने लाकर चौकी के ऊपर बिछा दिए। सारे गहने उनकी पितामही के जमाने के थे, नए फैशन का बारीक काम न था। जैसा मोटा था वैसा ही भारी था। सुनार ने हाथ में गहने उठाकर कहा, इन्हें क्या देखूं, इनमें कोई मिलावट नहीं है, ऐसे सोने का आजकल व्यवहार ही नहीं होता। ये कहते हुए उसने मकर के मुंह वाला मोटा एक बाला कुछ दबाकर दिखाया। वह टेढ़ा हो जाता था। मामा ने उसी समय नोटबुक में गहनों की एक सूची बना ली कि कहीं जो दिखाया गया था उसमें से कुछ कम ना हो जाए। हिसाब करके देखा, गहना जिस मात्रा में देने की बात थी, इनकी संख्या, दर एवं तोल उससे अधिक थी। गहनों में एक जोड़ा एयररिंग था। शंभुनाथ ने उसको सुनार के हाथ में देकर कहा, जरा इसकी परीक्षा करके देखो। सुनार ने कहा, ये विलायती माल है, इसमें सोने का हिस्सा मामूली ही है। शंभु बाबू ने इयररिंग जोड़ी मामा के हाथ में देते हुए कहा, इसे आप ही रखें। मामा ने उसे हाथ में लेकर देखा। यही इयररिंग कन्या को देकर उन्होंने आशीर्वाद की रस्म पूरी की थी। मामा का चेहरा लाल हो उठा। दरिद्र उनको ठगना चाहेगा, किंतु वे ठगे नहीं जाएंगे। इस आनंद प्राप्ति से वंचित रह गए, एवं इसके अतिरिक्त कुछ ऊपरी प्राप्ति भी हुई। मुंह अत्यंत भारी करके बोले, अनुपम, जाओ तुम सभा में जाकर बैठो। शंभुनाथ बोले, नहीं, अब सभा में बैठना नहीं होगा। चलिए, पहले आप लोगों को कुछ खिला दूं। मामा बोले, यह क्या कर रहे हैं लगन? शंभु बाबू ने कहा, उसके लिए चिंता ना करें, अभी उठिए। आदमी निहायत भला मानस था, किंतु अंदर से कुछ ज्यादा हठी प्रतीत हुआ। मामा को उठना पड़ा। बारातियों का भी भोजन हो गया। आयोजन में आडंबर नहीं था, किंतु रसोई अच्छी बनी थी और सब कुछ साफ सुथरा। इससे सभी तृप्त हो गए। बारातियों का भोजन समाप्त होने पर शंभुनाथ बाबू ने मुझसे खाने को कहा। मामा ने कहा, यह क्या कर रहे हैं? विवाह के पहले वर कैसे भोजन करेगा? इस संबंध में वे मामा के व्यक्त किए मत की अपूर्व उपेक्षा करके मेरी ओर देखकर बोले, तुम क्या कहते हो? भोजन के लिए बैठने में कोई दोष है? मूर्तिमती मात्र आज्ञा स्वरूप मामा उपस्थित थे। उनके विरुद्ध चलना मेरे लिए असंभव था। मैं भोजन के लिए ना बैठ सका। तब शंभुनाथ बाबू ने मामा से कहा, आप लोगों को बहुत कष्ट दिया है, हम लोग धनी नहीं हैं, आप लोगों की योग्य व्यवस्था नहीं कर सके, क्षमा करेंगे? रात हो गई है, आप लोगों का कष्ट और नहीं बढ़ाना चाहते, तो फिर इस समय, मामा बोले, तो सभा में चलिए, हम तो तैयार हैं। शंभुनाथ बोले, तब आपकी गाड़ी बुलवा दूं? मामा ने आश्चर्य से कहा, मजाक कर रहे हैं क्या? शंभुनाथ ने कहा, मजाक तो आप कर ही चुके हैं, मजाक के संपर्क को स्थायी करने की मेरी इच्छा नहीं है। मामा दोनों आंखें विस्फारित किए अवाक रह गए। शंभुनाथ ने कहा, अपनी कन्या का गहना मैं चुरा लूंगा, जो ये बात सोचता है उसके हाथों में कन्या नहीं दे सकता। मुझसे एक शब्द कहना भी उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। कारण प्रमाणित हो गया था, मैं कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो हुआ उसे कहने की इच्छा नहीं होती। झाड़ फानूस तोड़ फोड़ कर चीज वस्तु को नष्ट भ्रष्ट करके बारातियों का दल दक्ष यज्ञ का नाटक पूरा करके बाहर चला आया। घर लौटने पर बैंड शहनाई और कंसर्ट सब साथ नहीं बजे एवं अभ्रक के झाड़ों ने आकाश के तारों के ऊपर अपने कर्तव्य का निर्वाह करके कहां महानिर्वाण प्राप्त किया पता नहीं चला। घर के सब लोग क्रोध से आग बबूला हो गए। कन्या के पिता को इतना घमंड कलयुग पूर्ण रूप से आ गया है। सब बोले, देखें लड़की का विवाह कैसे करते हैं। किंतु लड़की का विवाह नहीं होगा, यह भय जिसके मन में ना हो उसको दंड देने का क्या उपाय है। बंगाल भर में मैं ही एकमात्र पुरुष था जिसको स्वयं कन्या के पिता ने झनवासे से लौटा दिया था। इतने बड़े सतपात्र के माथे पर कलंक का इतना बड़ा दाग किस दुष्ट ग्रह ने इतना प्रचार करके गाजे बाजे से समारोह करके आंक दिया। बाराती यह कहते हुए माथा पीटने लगे कि विवाह नहीं हुआ, लेकिन हमको धोखा देकर खिला दिया। संपूर्ण अन्न सहित पकवाशय निकालकर वहां फेंक आते तो अफसोस मिटता। विवाह के वचन भंग का और मान हानि का दावा करूंगा, कहकर मामा घूम घूम कर खूब शोर मचाने लगे। हितैषियों ने समझा दिया कि ऐसा करने से जो तमाशा बाकी रह गया है वो भी पूरा हो जाएगा। कहना व्यर्थ है, मैं भी खूब क्रोधित हुआ था। किसी प्रकार शंभुनाथ बुरी तरह हारकर मेरे पैरों पर आ गिरे। मूछों की रेखा पर ताव देते देते केवल यही कामना करने लगा। किंतु इस आक्रोश की काली धारा के समीप एक और स्रोत बह रहा था जिसका रंग बिल्कुल भी काला नहीं था। संपूर्ण मन उस अपरिचित की ओर दौड़ गया। अभी तक उसे किसी भी प्रकार वापस नहीं मोड़ सका। दीवार की आड़ में रह गया। उसके माथे पर चंदन चर्चित था, देह पर लाल साड़ी, चेहरे पर लज्जा की ललाई। हृदय में क्या था ये कैसे कह सकता हूं। मेरे कल्प लोक की कल्प लता वसंत के समस्त फूलों का भार मुझे निवेदित कर देने के लिए झुक पड़ी थी। हवा आ रही थी, सुगंध मिल रही थी, पत्तों का शब्द सुन रहा था। केवल एक पग बढ़ाने की देर थी। इसी बीच वह पग भर की दूरी क्षण भर में असीम हो गई।
अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अपरिचिता का पहला भाग। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।